रंग बिरंगी दुनिया सारी, भांत भांत के लोग मिलके बिछड़ना, बिछड़ के मिलना सारा है संजोग।
हर खुशी मुबारक हो, हर जज्बात मुबारक हो, नई दिशा की आप सबको ये आखिरी शाम मुबारक हो। बताएं अब तलक जो बातें हमने, अपनाएंगे उन्हें आप जीवन में, इस विश्वास के साथ हमारा आखिरी सलाम मुबारक हो। नमस्कार दोस्तों, मैं जगत चंदौली हाजिर हूँ एक बार फिर आपके बीच नई दिशा के इस आखिरी एपिसोड के साथ। दोस्तों, ये सफर आज से लगभग एक साल पहले हमने शुरू किया था एक मकसद के साथ। मकसद था HIV के प्रति आप सभी को जागरूक करना। दोस्तों, आपके द्वारा भेजे जाने वाले खतों, SMS और ईमेल्स को देखकर हम खुद को अपने मकसद में कामयाब होता हुआ भी देखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जंग जारी रहेगी, हमेशा जारी रहेगी, चाहे हम हों या ना हों। सिर्फ हमारे हाथ में ही नहीं है, बल्कि आपके हाथ में भी है। आप अपने जानने वालों, अपने दोस्तों के साथ HIV पर जरूर बात करें और उन्हें भी अपनी तरह जागरूक बनाएं, तभी हम अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो सकेंगे। तो दोस्तों, आप हमसे आज वादा कीजिए कि भले ही हम इस नई दिशा में रहें या ना रहें, लेकिन ये जंग हमेशा जारी रहेगी, आप इसे हमेशा जारी रखेंगे। और दोस्तों, अब बात हमारे श्रोताओं की, यानी कि आपकी खुशी की।
ओ जी, एक मिनट रुको जी।
लेकिन आप कौन हैं और यहाँ?
हाँ, बड़े आए खुशी की बात करने वाले। हाँ, भला मेरे बिना कोई खुशी पूरी हो सकती है?
अरे अरे अरे, अरे काजोल जी, आप?
हाँ, अब भला मैं ना होती तो क्या कभी खुशी कभी गम होती?
नहीं जी, बिल्कुल नहीं होती। लेकिन आप ये बताइए, वैसे आप हमारे इस शो में, मेरा मतलब अपनी वो भारत हलवाई की दुकान को छोड़कर यहाँ क्या करने आई हैं?
अरे,
मगर ये बताइए कि आखिर ऐसा हुआ क्या? क्या हुआ?
अरे वो दुकान तो कब की हड़प ली
है? मगर किसने?
किसने? हाँ? अरे और किसने, उस शाहरुख ने।
कि क्या शाहरुख ने?
खैर छोड़ो, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अरे हाँ, वो आप कुछ खुशी खुशी की बात कर रहे थे। वो क्या है?
वो काजल जी, वो क्या है कि हम आज के एपिसोड में अपने सभी श्रोताओं को जीवन की राह धारावाहिक की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं।
हाय, ये तो बड़ा ही चंगा आइडिया है जी। तो आज मैं भी आपका साथ देती हूँ धारावाहिक की कहानी सुनाने में।
हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आप हमारा साथ दीजिएगा। अरे हाँ दोस्तों, मैं तो आपको बताना भूल ही गया कि प्रेमा आज हमारे साथ नहीं है। तो भाई क्या हुआ, प्रेमा के गैर मौजूदगी में चलो आज काजोल जी का ही साथ ले लेते हैं।
हाय, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी गल। चलो तुम तब तक प्रेमा को मिस करो, मैं श्रोताओं को धारावाहिक की कहानी सुना देती हूँ।
जीवन की राह की कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स की जिंदगी से जिसके लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती है। इस शख्स का नाम है जयपाल। अपने परिवार से दूर पिछले 5 सालों से मुंबई में रह रहा जयपाल पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर है। गांव में जयपाल की पत्नी और उसके बूढ़े माँ बाप हर पल अपने बेटे के गांव लौटने की राह देखते रहते हैं। लेकिन वहां जयपाल अपने परिवार से मिलने के बारे में तो दूर, उन्हें घर के खर्च के लिए पैसे देने तक के बारे में नहीं सोचता और अपनी सारी कमाई रेड लाइट एरियाज में उड़ा देता है।
काय करे जयपाल, तू अपनी सारी कमाई अपनी इस चंदा पर ही लुटा देता है। घर पर कोई नहीं है क्या?
ए चंदा रानी, ये जयपाल सिर्फ तेरा है और जयपाल की सारी कमाई तेरी, तेरे ऊपर बिंदास खर्च करने का।
आइला देवा, अरे छोड़ मेरे को, बीवी बच्चे क्या करेंगे?
देख मेरा मूड नहीं खराब करने का, ये बीवी बच्चों का नाम लेके मूड नहीं खराब करना है।
अरे राजा, तो नाराज हो गया
ना।
अरे चंदा तो मजाक कर ली थी रे।
अरे तो मैं भी तो मजाक कर रहा हूँ मेरी रानी।
देखता है तू क्या?
दोस्तों ऐसा नहीं है कि जयपाल को उसके परिवार के जिम्मेदारियों के प्रति किसी ने समझाया नहीं। जयपाल का दोस्त सूरज अक्सर जयपाल को समझाता है और उसे गांव जाकर परिवार से मिलने के लिए कहता है, लेकिन जयपाल हमेशा उसकी बात को बहाना बनाकर टाल देता।
उधर मुंबई में जयपाल अपने परिवार की परेशानियों से बेखबर मस्ती भरी जिंदगी जी रहा था, तो वहीं जयपाल के ही गांव में रहने वाले मास्टर राजन को हर पल एक नई परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो गांव के ही एक स्कूल में पढ़ाते हैं। बच्चों को उनके पढ़ाने का अंदाज बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों के बीच उनकी बढ़ती लोकप्रियता स्कूल के प्रिंसिपल को फूटी आंख नहीं सुहाती और वो हमेशा किसी न किसी बहाने से उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है।
हाँ राजन सर, अब बताइए आप अपने तौर तरीके ठीक करेंगे या नहीं? ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आपकी कई शिकायतें आ चुकी हैं। आपको वार्निंग भी दी जा चुकी है, फिर भी आप अपना रवैया ठीक करने को तैयार नहीं है, इसे क्या समझा जाए?
सर वो बच्चे हैं, उन्हें मार पीट कर या डांट फटकार कर ठीक करना उचित नहीं होगा। मैंने उनसे बात की है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बचपन में तो इतना उत्साह रहता ही है सर।
आपको लगता है दुनिया में एक आप ही हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं? यहाँ पढ़ाते पढ़ाते 25 साल हो गए, हमारे क्लास में तो कभी ऐसा नहीं होता। बच्चे अगर शोरगुल करेंगे तो सीखेंगे क्या?
सर पिछले 25 सालों में दुनिया काफी बदल चुकी है, अब बच्चों को पहले की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। नई शिक्षा प्रणाली में बच्चों को पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा शामिल करने की बात की जा रही है और ये सब हमारी टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा रहा है, वो ट्रेनिंग जो सरकार से हमें मिली है।
मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ, मेरे लिए इस स्कूल में एक ही बात मायने रखती है और वो है अनुशासन। अनुशासन के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। इस बात का ख्याल रहे कि आगे से ऐसा नहीं हो, वरना मजबूरन हमें आपके खिलाफ कोई कार्यवाही करनी पड़ सकती है जो हम चाहते नहीं। अब आप जा सकते हैं।
पर सर आप मेरी बात तो सुनो।
आप बेकार में बात ना बढ़ाएं, आपके लिए यही ठीक रहेगा। उम्मीद करता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। अब आप जा सकते हैं, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, इसे अभी निपटाना।
ठीक है सर, जैसा आप कहें।
तो दोस्तों देखा आपने कितना अजीब है कि कोई स्कूल में पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाता है और उसे रोका जाता है, और कोई ऐसा भी है जिसे गांव से शहर पढ़ाई करने के लिए भेजा गया है, लेकिन वो वहाँ पढ़ाई के अलावा सभी कुछ करता है।
चस्का पर ताला लगता नहीं, भेजा ये साला सुनता नहीं।
जी हाँ दोस्तों, गांव के ही प्रधान का इकलौता बेटा शहर में हॉस्टल में रहता है। गलत संगत में रहने की वजह से वो गलत आदतों का भी आदी हो जाता है। वो अक्सर नशा करता है और हॉस्टल से बाहर रहता है। विनोद के पिताजी को ये बात पता भी चल जाती है, लेकिन विनोद अपनी बातों से सारी असलियत पर पर्दा डाल देता है।
पढ़ने लिखने को घर वालों ने भेजा था हमको, क्यूट्स पुराने रट रट के,
यारो फट गए हम तो, अपना कुछ नहीं होगा,
कौन है साला पंगा लेगा किसमें इतना।
दोस्तों कहते हैं मौज मस्ती की भी एक सीमा होती है और हर चीज की अपनी मर्यादा होती है। जयपाल ना ही नशा करना छोड़ता है और ना ही रेड लाइट एरियाज में जाना, नतीजन जयपाल की तबीयत खराब रहने लगती है।
ऐसे में जयपाल का दोस्त सूरज जयपाल को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। जयपाल का HIV टेस्ट होता है और जयपाल HIV पॉजिटिव पाया जाता है।
जयपाल तुम HIV पॉजिटिव हो।
क्या? क्या? नहीं डॉक्टर साहब, आप ध्यान से देखें ना मेरी रिपोर्ट, कहीं कुछ गलती है? नहीं ऐसा कैसे हो सकता है?
गलती जरूर हुई है और इसी का परिणाम है कि आज तुम HIV पॉजिटिव हो चुके हो।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब, मेरे पीछे घर है, बूढ़े माँ बाप है, बीवी है, बच्चे, ये सब क्या हो गया मेरे साथ डॉक्टर साहब, ये सब।
संभालो अपने आप को जयपाल, संभालो। अरे अपने घर परिवार की खातिर से तुम्हें हिम्मत रखनी होगी।
ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ।
ठीक है
दोस्तों, उधर शहर में विनोद नशे का इतना ज्यादा आदी हो चुका है कि वो नशे के लिए लोगों से पैसा तक उधार लेना शुरू कर देता है और पैसा ना चुकाने की वजह से उसे लोगों से धमकियां भी मिलने लगती हैं। और इसी दौरान विनोद हॉस्टल के ही वार्डन के कत्ल के इल्जाम में फंस जाता है, जो कि उसने नहीं किया होता।
जनाब।
राधेश्याम कहो।
जनाब ये पर्स मिला है, इसमें उस वार्डन की फोटो भी लगी है।
ये तुम्हें कहाँ मिला?
जनाब इस लड़के के लॉकर से।
विनोद।
सर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया।
अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वार्डन का ये पर्स तुम्हारे लॉकर में क्या कर रहा है?
सर मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया।
हवलदार ले चलो इसे।
पिंटो।
ए चल
पिंटो बोलना इसको, मैंने कुछ नहीं किया।
अब जो भी बोलना है थाने में बोलना, चल के थारी भी मुंह खुलवाऊं मैं, चल।
सब औरों को लाल पुत गयो बिपदा छाई रे।
और वहाँ कॉलेज के हॉस्टल में एक और नया स्टूडेंट आता है, सिद्धार्थ। पिंटू और अजीत नोट के गिरफ्तार होने से बहुत खुश हैं। सिद्धार्थ की मुलाकात अजीत और पिंटू से होती है। हाय रब्बा, फिर क्या होता है? बाद में पता चलता है कि सिद्धार्थ कोई स्टूडेंट नहीं है, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है जो कि वार्डन के कत्ल की सच्चाई का पता लगाने के लिए स्टूडेंट बनकर कॉलेज में आया था।
ए, ए पिंटो।
क्या है अजीत भाई?
यार यार, ये जगह कुछ अजीब सी नहीं लग रही?
हाँ, अपना कमरा तो नहीं लगता ये।
और ये तुम्हारा कमरा है भी नहीं, क्योंकि इस वक्त तुम दोनों जेल में हो।
जेल? सिद्धार्थ और हम यहाँ?
पहली बात, ये सिद्धार्थ नहीं है।
इंस्पेक्टर आप?
और ये हैं सब इंस्पेक्टर सिद्धार्थ दीक्षित।
क्या?
और दूसरी बात रही तुम्हारे यहाँ आने की, तो जब तुम किसी बेगुनाह को कत्ल के झूठे इल्जाम में फंसाने के लिए जाल बिछा सकते हो, तो पुलिस भी असली कातिल तक पहुँचने के लिए कोई भी खेल खेल सकती है।
दोस्तों, उधर जयपाल गाँव वापस आ जाता है। जयपाल घर में सबको अपने HIV पॉजिटिव होने की बात बताता है। जयपाल के पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी मौत हो जाती है।
अरे सर, तूने क्या कर दिया शहर में? ऐसी क्या गलतियां कर दी तूने जयपाल? तुझे ये बीमारी लग गई? ये बुढ़ापे में किस बाप की सजा दे रहा
हूँ?
ये क्या दिल्ली का नाम है?
अरे संभालिए अपने आप को, संभालिए। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो जयपाल अपने
जयपाल की माँ अब इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है? जिस बाप का अपना जवान बेटा ये कह रहा हो, उसे मुझे पता नहीं कि इसकी जिंदगी के कितने दिन बचे
हैं।
इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है? अब इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता
है?
लेकिन जयपाल ना फिर भी हिम्मत नहीं हारता और फिर से एक नई शुरुआत करता है। वो गांव में एक परचून की दुकान खोलता है। लेकिन गांव के प्रधान को ये गवारा नहीं होता और वो उसी समय जयपाल से अपना कर्जा वापस मांगने पहुंच जाता है।
लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इत्तेफाक से सूरज भी उस वक्त गांव में ही होता है और वो ऐन मौके पर जयपाल की मदद के लिए पहुंच जाता है।
तुम लोग ऐसे मानने वाले नहीं हो। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इनका सामान उठाकर बाहर करो दुकान से। हट आगे से,
ठहरो।
सूरज तू?
हाँ जयपाल, मैं। प्रधान जी, ये क्या कर रहे हैं आप?
क्या कर रहा हूँ? अरे अपने पैसे वसूल कर रहा हूँ।
ऐसे पैसे वसूल करेंगे? किसी गरीब आदमी की कोशिश को नाकामयाब करके?
क्या मतलब?
देखिए, आप गांव के प्रधान हैं। गांव के लोगों के बारे में सोचना आपका फर्ज है और जब गांव का एक आदमी अपने घर परिवार के लिए आमदनी का कोई जरिया बना रहा है तो आप उसकी कोशिश को नाकामयाब करने यहाँ चले आए?
अरे सूरज, तू इन छोटी जात के लोगों को नहीं जानता।
खबरदार प्रधान जी।
छोड़ना यार सूरज।
नहीं यार, अगर आपने जयपाल के बारे में इस तरह की कोई बात की तो फिर ठीक नहीं होगा। हाँ, अगर गांव का प्रधान ही लोगों में भेदभाव करेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? और जहाँ तक जानने की बात है, मैं अपने दोस्त जयपाल को भी जानता हूँ और आपको भी।
सूरज, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो।
बेइज्जती तो आपने जयपाल की है। सूरज, मेरी तो चुप कर यार। प्रधान जी, आपको इसके लिए जयपाल से माफी मांगनी होगी।
माफी? और मैं? ये मेरा कर्जदार है और इसके साथ मैं चाहे जैसा मर्जी सलूक करूं।
यही बात है तो ये लीजिए, ये रहे आपके पैसे।
सूरज,
उधर विनोद भी कत्ल के इल्जाम से बरी हो जाता है और नशा सुधार गृह से छुट्टी मिलने के बाद वो अपने गांव वापस आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात रविता से होती है, जिसे वो पहले कभी प्यार करता था लेकिन वो उसे बीच में ही छोड़कर चला गया था,
जिसके लिए विनोद अब रविता से माफी मांगता है।
विनोद, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ?
रविता,
क्या अब भी कुछ बाकी रह गया था?
नहीं रविता, नहीं, मैं तो बस तुमसे माफी मांगना चाहता था।
माफी? माफ तो उसे किया जाता है जिसे अपनी गलती का एहसास हो।
मुझे है रविता, मुझे है। मुझे नहीं पता था कि हमारी नादानी की वजह से तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, और अगर आज तुमने मुझे माफ नहीं किया ना, तो मैं खुद को भी कभी उस गलती के लिए माफ नहीं कर पाऊंगा, और फिर मेरे पास प्रायश्चित करने का सिर्फ एक ही उपाय बचेगा और वो होगा मेरी मौत।
पागल हो गए हो क्या? भला ऐसा भी कोई करता है विनोद?
इसका मतलब तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो?
विनोद, अभी तो मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ और फिर से किसी प्यार व्यार के लफड़े में नहीं पड़ना चाहती।
रविता, तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से कम्प्लीट करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अब तुम्हें कोई परेशानी हो। और एक बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ।
क्या क्या बताना चाहते हो विनोद?
सौ दर्द है सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं।
उधर राजन सर गांव में एक रक्तदान शिविर का आयोजन करवाते हैं, जहां गांव के कई सारे लोग रक्तदान करते हैं, जिनमें से विनोद भी एक होता है। रक्त की जांच के दौरान ये पता चलता है कि विनोद का जो रक्त लिया गया है वो HIV पॉजिटिव है।
उधर सूरज डाक के जरिए जयपाल के लिए उसकी ART दवाइयां भेजता है, लेकिन वो पार्सल प्रधान के हाथ लग जाता है और प्रधान को जयपाल के HIV पॉजिटिव होने की बात पता चल जाती है। प्रधान पंचायत में जयपाल के HIV पॉजिटिव होने की बात सबके सामने रखता है। पंचायत जयपाल के हक में फैसला तो सुनाती है, लेकिन अब सारे गांव के लोग जयपाल से भेदभाव करने लगते हैं। गांव के लोग न सिर्फ उसकी दुकान से सामान खरीदना बंद कर देते हैं, बल्कि उसकी बेटी को भी स्कूल से निकाल देते हैं।
पिताजी, पिताजी आप आ गए।
हाँ बेटा, क्या हुआ बेटा?
पिताजी, आज मुझे मास्टर जी ने स्कूल से निकाल दिया।
क्या? लक्ष्मी, तुमने मुझे बताया नहीं?
वो आप पहले ही बहुत परेशान थे।
लक्ष्मी,
तो मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने मास्टर जी को कह दिया है।
माँ,
वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
माँ,
अरे वो ऐसे हमारी बच्ची को स्कूल से नहीं निकाल सकते, मैंने बोल दिया है उनको। हाँ,
लेकिन फिर भी वो नहीं माने, है ना? लक्ष्मी,
पिताजी,
लक्ष्मी शांत हो जाओ।
मैं
प्रधान जी से बात करूंगा, तुम शांत हो जाओ।
मां, चुप हो जाओ।
दोस्तों, उधर विनोद इस कशमकश में है कि वो रविता को अपने HIV पॉजिटिव होने की बात कैसे बताएगा। वो रविता को धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए वो आत्महत्या करने का फैसला करता है और घर से निकल जाता है।
जीना क्या जीवन से हार के, जीना क्या जी
से हार के।
इधर जयपाल के घर के हालात भी बद से बदतर होते चले जाते हैं, जिसके लिए जयपाल प्रधान को कसूरवार ठहराता है और उसे जान से मारने के लिए घर से निकल पड़ता है। रास्ते में जब उसे पता चलता है कि विनोद ने झील में छलांग लगा दी है, तो वो प्रधान के साथ अपनी दुश्मनी भुलाकर विनोद को बचाने के लिए झील में कूद जाता है।
अरे कोई मेरे बेटे को बचा लो भाई।
ये तो प्रधान है, पर ये इस तरह क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ प्रधान जी?
अरे भाई मेरे बेटे को बचा लो, वो झील में कूद गया।
क्या?
मेरे बेटे को
प्रधान जी, आप हौसला रखो। विनोद बाबू, मैं आ रहा हूँ। विनोद,
अरे देखो जयपाल झील में कूद गया। अरे कोई तो बचाओ, जयपाल मेरे बेटे को बचा लो।
दोस्तों, उधर शीला जो कि HIV पॉजिटिव होते हुए भी एक बच्चे को जन्म देने वाली है, डॉक्टर की सभी हिदायतों को ध्यान से अपनाती है और आखिर में एक बेटे को जन्म देती है।
मुबारक हो राजन जी, बेटा हुआ है।
सच डॉक्टर, मेरा बेटा हुआ है?
हाँ।
भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। सुना तूने सुमन, डॉक्टर ने क्या कहा? तेरा भाई हुआ है।
हाँ पिताजी, मैंने सुना, मेरा भाई।
छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी।
और पता है, जयपाल की वजह से विनोद की जिंदगी बच जाती है। प्रधान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी गांव वालों के सामने जयपाल को सम्मानित करता है और उससे अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगता है।
जयपाल, यहाँ मंच पर आ जाओ।
जयपाल, जाओ ना वहाँ मंच पर।
नहीं यार, वो सूरज वो।
अरे जाइए ना, प्रधान जी आपको मंच पर बुला रहे हैं।
नहीं लक्ष्मी, वो
जयपाल यहाँ मंच पर आ जाओ।
देखो जयपाल आ रहा है। जयपाल।
जयपाल
जी प्रधान जी,
ये लो ये शॉल और 51,000 रुपए।
प्रधान जी ये तो
गांव वालों, जयपाल बहादुर तो है ही, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने मेरे बेटे की जान बचाई है, बल्कि इसलिए भी कि वो HIV पॉजिटिव होने के बाद भी जिंदगी जीने का जज्बा रखता है। और आज मैं सभी गांव वालों के सामने जयपाल से उसके साथ किए गए अपने बुरे व्यवहार की माफी मांगता हूँ।
तो दोस्तों, ये था जीवन की राह का सफर। हमें पूरा विश्वास है दोस्तों कि ये सफर आपके लिए मनोरंजक तो रहा ही होगा, साथ ही आपको इससे जीवन की सही राह का भी पता चला होगा।
हाय, तुसी तो कमाल कर दिया जी। एक ही एपिसोड में पूरी कहानी सुना दी। वावा वावा, मजा आ गया।
अच्छा काजोल जी, अगर आपकी इजाजत हो तो आपका राज खोल दिया जाए।
कौन सा राज?
मेरा मतलब आपका असली नाम अपने श्रोताओं को बता दिया जाए।
ओ जी, बताया तो काजोल।
अच्छा जी, काजोल।
हाँ?
अरे उनकी तो आप मिमिक्री कर रही थी। दोस्तों, हम बताते हैं इनका असली नाम क्या है। ये हैं सीमा जी, जो कि हमारे धारावाहिक में शीला का किरदार निभा रही थी। तो सीमा जी, आपका प्रोग्राम के दौरान हमारे श्रोताओं का मनोरंजन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और जगत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने का।
शुक्रिया।
घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो।
तो दोस्तों, ये था नई दिशा के इस सीरीज का आखिरी एपिसोड, लेकिन अगर मौका मिला तो हम जल्दी ही नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे आप लोगों के बीच।
लेकिन जाने से पहले हम धन्यवाद करते हैं अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन का, जिनके वित्तीय सहयोग से ये कार्यक्रम आइडियोसिंक मीडिया कंबाइन द्वारा आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा था।
साथी दोस्तों, इस साल के दौरान जो प्यार, जो अपनापन आपने हमें दिया, इस प्रोग्राम को लगातार सुना,
उसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं।
और दोस्तों, अब जाने से पहले आप हमसे वादा कीजिए
कि HIV के खिलाफ आप इस जंग को जारी रखेंगे।
तो अब मुझे यानी जगत
और मुझे यानी सीमा को
दीजिए इजाजत।
नमस्कार।